ओम शांति। तो हमारे सन्मुख आदरणीय वीणा दीदी जी उपस्थित हैं। आप प्रख्यात राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारीज की सम्मानित एवं प्रेरणादायक वक्ता है और आप 48 इयर्स से अधिक वर्षों से आध्यात्मिक जीवन वर्षों का आध्यात्मिक जीवन अनेक जीवनों को दिशा दे रहा है। दीदी जी गीता ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबंधन के विविध विषयों पर विशेषज्ञ वक्ता है। उन्होंने भारत भर में सैकड़ों कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मिक जागृति का संदेश पहुंचाया है तथा टीवी और रेडियो पर अनेक प्रेरक कार्यक्रम भी दिए हैं। किशोर अवस्था में ही ईश्वरीय ज्ञान को अपनाकर उन्होंने अपना जीवन परमात्मा सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी सहज और गहन और प्रेरणादायक शिक्षाएं ओम शांति चैनल, गॉडलीवुड स्टूडियो सहित अनेक माध्यमों से जन जन तक पहुंच रही हैं। आज हम तीव्र पुरुषार्थ की विधि के बारे में दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं परमात्मा अवतरण भूमि में हम सबका पुनः आना हुआ है। 5000 साल के इस अनोखे ड्रामा के अंदर ये जो समय संगम युग का हम सबको उपलब्ध है मानो परमात्मा का वरदान है। दुनिया के 800 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने हमें चुना, अपना बनाया, अपने दिल में जगह दिया, हाथ पकड़कर चलना सिखाया और बीच बीच में अगर हम कहीं रुक गए तो रुकावट को बाजू करके पार करके आगे बढ़ने की कला भी बाबा ने सिखाई। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जो बिना निराशा के हताशा के इतनी सालों से, करीब 90 साल होने को आए, बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं और रोज रोज मीठे बच्चे कहकर शिक्षा दे रहे हैं। वैसे माने तो हम कोई इतना मीठा भी नहीं है, है ना? हमारे अंदर कड़वेपन है, खटाई है, बहुत थोड़ी बहुत बुराइयां भी है। इतना सब होते हुए बाबा हमें रोज मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे कहकर अपने जैसे बनाने के लिए दिन रात हमारे पीछे लगा हुआ है बाबा। वंडर लगता है जो अशरीरी है, अभोक्ता है, वैसा परमात्मा हम बच्चों को इस बंधन से छुड़ाने के लिए खुद एक शरीर का आधार लेके आए और इतना सुंदर, इतना गहरा ज्ञान कितने प्यार से बाबा दे रहे हैं। चार सब्जेक्ट के माध्यम से बाबा हमें दुनिया के कोई भी शिक्षक को पीछे कर आगे बढ़कर हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आज हम बाबा के बनने के बाद कैसे पुरुषार्थ चल रहा है हमारा और कैसा होना चाहिए, क्या बाधाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। हम सभी वैसे तो कॉन्फ्रेंस हॉल में शांतिवन में बैठे हुए हैं लेकिन सच मानो तो हम सभी शिव बाबा के दिल तख्त में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं सभी? कौन कौन बैठे हैं दिल तख्त पर? सभी कहाँ बैठे हैं? वाह, है ना? इसलिए अपने भाग्य के बारे में एक बार वाह वाह तो करें। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा परिवार, वाह यज्ञ, वाह टोली, वाह ब्रह्मा भोजन, वाह हमारे पूर्वज दादियां, वाह मेरा भाग्य। कितने भाग्यशाली हैं हम, है ना? वाह। इसलिए ऐसी सुंदर परिवार देने के लिए, ऐसी सुंदर यज्ञ में हमें साथी बनाने के लिए सोचिए, कोई सिनेमा चल रहा हो जिसमें अमिताभ बच्चन नाच रहा हो, उसके पीछे खड़े होके किसी को नाचने का मौका मिल जाए, वो कैमरे में दिखाई नहीं देगा लेकिन उसको कितना, है ना, घमंड रहता है, गर्व रहता है कि मैं एक ही स्टेज पर अमिताभ बच्चन के साथ मैंने डांस किया। आप सोचिए, जब इस सृष्टि के महानाटक में, सृष्टि नाटक चक्र में परमात्मा का पार्ट इस धरती पर आना हुआ, उसके साथ पार्ट बजाने का मौका किसे मिला? मिला कि नहीं मिला? जब भगवान इस धरती पर पार्ट बजा रहा है, उसके साथ पार्ट बजाने का, उसके साथी बनने का, उसके सहयोगी बनने का, उसके भुजाएं बनने का हमें मौका मिला है, इसके बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। लेकिन इतना बड़ा भाग्य मिलने के बावजूद कई बार पुरुषार्थ की गाड़ी कहीं कहीं अटक जाती है। आज हमारा विषय है तीव्र पुरुषार्थ की विधि, है ना? पुरुषार्थ का मतलब क्या है? यहां बाबा के नए बच्चे भी होंगे, पुराने बच्चे भी होंगे। पुरुष अर्थ दो शब्द से पुरुषार्थ बना है। पुरुष मना आत्मा, आत्मा अपने लिए जो कमाती है, कमाई करती है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। अपने लिए आत्मा जो खुद के लिए कमाई करती है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तो जैसे हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने हमें अपने गोद में जगह दे दिया, उस घड़ी से हमारा पुरुषार्थ शुरू हुआ। मुरली सुनना, योग लगाना, सेवा करना, धारणा करना, मीठी बातें करना, ये सारे पुरुषार्थ के अलग अलग विधियां हैं। पुरुषार्थ में दो पार्ट कर सकते हैं हम, एक है साधारण पुरुषार्थ, एक है तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो हर किसी का चलता है, किसी का साधारण पुरुषार्थ चलता है, रोज क्लास में आए चले गए बस हो गया। किसी का अच्छा पुरुषार्थ चलता है, सहयोगी बनते हैं, चार्ट रखते हैं, दीदियों के साथ मिलकर पुरुषार्थ में सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, खुद भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे लेके जाते, अपनापन मनमत नहीं चलाते, श्रीमत पर चलते हैं, जैसे दीदियां कहती है उसी अनुसार चलते, संगठन को बनाए रखते हैं, अपना भी पुरुषार्थ साथ में, जिसे बाबा का बहुत सुंदर गीत है, पवित्रता के राह पर हमको चलते चलना है, जो भी मिले राह में उसे मंजिल तक पहुंचाना है, इस पुरुषार्थ की राह में जो भी मिले उन सबको साथ लेके आगे चलते हैं। आप अपने आप से भी उदास नहीं होते, अपने आप से भी मूड ऑफ नहीं होते, न रूठते न रूसते, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते रहते हैं। अच्छा पुरुषार्थ और अच्छा हो जाए उसे तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं, है ना? लेकिन तीव्र पुरुषार्थ और साधारण पुरुषार्थ में अंतर क्या है? साधारण पुरुषार्थ मानो कि चल रहा है, जैसे दुनिया कहते ना, बस दिन काट रहे हैं, ऐसे समझ में आया, कहते दिन काट रहे हैं। बाबा के बच्चे बने, उनके मन में सदैव एक प्रश्न रहता, विनाश कब होगा, जल्दी जल्दी स्वर्ग आ जाए, क्योंकि उनको संगम युग में, अरे और कितने दिन मुरली सुने, वही वही मुरली रोज रोज सुनना है क्या, जल्दी सतयुग आ जाए, ऐसे सोचते। बाबा ने एक बार पूछा है, किसी ने पूछा था बाबा से, बाबा सतयुग कब आएगा? तो बाबा ने कहा, क्यों शिव बाबा से थक गए हो क्या? शिव बाबा को भेजना चाहते हो क्या? क्योंकि जब तक संगम युग है बाबा हमारे साथ है, सतयुग में तो बाबा साथ नहीं होंगे। सतयुग का चाहना रखना इसका मतलब बाबा को जल्दी जल्दी वापस भेज देना। लेकिन वर्तमान की घड़ी जो चल रही है, चारों ओर की जो माहौल है, परिस्थितियां हैं, प्रकृति से हो या वातावरण से हो, सब तरफ से जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, ये सारा इशारा कर रहे हैं कि वापसी का समय ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्दी जाने का बाबा के साथ बाबा इशारा दे देगा, सबको लौटने का समय आ गया है। तो अब हम एक पैरामीटर चेक करें, हमारा पुरुषार्थ साधारण है या तीव्र पुरुषार्थ है। आप मुझे बताइए, समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ साधारण होना चाहिए या तीव्र होना चाहिए? किस किस को लगता है पुरुषार्थ साधारण है तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? किस किस को लगता है हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे जो ब्राह्मण बैठे हैं, सभी को ये तो चाहना है कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ हो, है ना? जब चाहना होती है, कहते अच्छा चाहना रखो, दिल से चाहना रखो, तो कायनात आपकी चाहना पूर्ण करने में जुट जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी चाहना पूर्ण जरूर होगी। लेकिन अभी हम सोचेंगे कि साधारण पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थ की ओर कदम कैसे बढ़ाएं। पुरुषार्थ में हम देखें, एक होता है चलती कला का पुरुषार्थ, चलना। एक होता है चढ़ती कला का पुरुषार्थ। एक होता है उड़ती कला का पुरुषार्थ। और एक होता है रुकती कला का पुरुषार्थ। ध्यान से सुनना, एक है चलती कला, हम चल रहे हैं, हम रुके नहीं हैं, हम चल रहे हैं। आप सोचिए, आप दिल्ली से यहां आ रहे हैं, चलते आएंगे तो कितना दिन लगेगा आपको? उसके बदले गाड़ी चढ़ के आ गए, आप जल्दी पहुंच गए। उसके बदले आप विमान चढ़ के आ गए, उड़ के आ गए और जल्दी पहुंच गए, है ना? तो पुरुषार्थ में बाबा ने ये तीन तरह के पुरुषार्थ बताया है। और बाबा ने कहा है चलती कला का पुरुषार्थ बेबी पुरुषार्थ है, लेकिन हमको पुरुषार्थ करना है समय के अनुसार। चलती कला भी नहीं, चढ़ती कला भी नहीं, कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए हमारा? उड़ती कला का पुरुषार्थ। जब हम उड़ते हैं तो नीचे की सारी चीजें छोटी छोटी लगती है, बाधाएं नहीं लगती। लेकिन क्या है, अगर चलती गाड़ी रुक गई तो कोई बात नहीं, एक गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी में हम बैठ सकते हैं। चढ़ रहे हैं, रुक गए, थोड़ा सुधार के संभल के फिर चढ़ भी सकते हैं। लेकिन उड़ते समय अगर रुक गए, है ना, हम फ्लाइट में बैठे हैं, गाड़ी अगर फ्लाइट बीच में रुक गई तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। अब हमें सोचना है कि हमारी कौन सी कला की पुरुषार्थ है। आप बता सकते हैं किस किस का पुरुषार्थ लगता है हमारा अभी रुकती कला का पुरुषार्थ है? आप सोचेंगे, दीदी अगर रुकती कला का पुरुषार्थ होता तो यहां तक नहीं आते, वहीं बैठे रहते अपनी जगह। बाबा के घर पहुंचे हैं, बाबा ने बुलाया है, तो रुकती कला का तो नहीं होगा। अगर रुका हुआ था अभी तो भी बाबा ने जगा दिया, उठ के यहां तक पहुंच गए। अब आप सोचिए, अब दिल्ली जैसे, बेंगलुरु जैसे महानगर में चल रहे हैं, चलती कला गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी बहुत महंगी है, रोल्स रॉय गाड़ी है, बहुत महंगी, 2 करोड़ की गाड़ी है। लेकिन उस गाड़ी में बैठने के बाद भी बेंगलुरु का या दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो क्या करता है, 5 से 7 किलोमीटर जाने के लिए 1-1 घंटा, कभी 1.5-1.5 घंटा ले लेता है। क्योंकि कारण क्या है, ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक। समझ में आया? रुकती कला का पुरुषार्थ क्यों होता है? हमारे पास साधन अच्छे हैं, हमारी बुद्धि भी रिफाइंड है, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, अच्छे साधनों से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है हमारी कि हम अपने ही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कौन से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? जिसके कारण से हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ नहीं, साधारण पुरुषार्थ बन जाता है। मैंने बताया ना, गाड़ी अच्छी है, वैसे रोड भी अच्छे हैं, फिर भी हम रुक रहे हैं। उसका कारण है बड़ी बड़ी बिजी ट्रैफिक। हमारे अंदर भी ट्रैफिक चलती है, बहुत बिजी शेड्यूल का ट्रैफिक चलती है। वो ट्रैफिक है, एक है व्यर्थ चिंतन का ट्रैफिक, एक है परचिंतन का ट्रैफिक, एक है अशुभ चिंतन का ट्रैफिक। चलता है कि नहीं चलता है? कौन कौन बताएंगे मेरे अंदर व्यर्थ चिंतन चलता ही नहीं है, ऐसे कोई है? नहीं, सभी के अंदर क्या चलता है? व्यर्थ चिंतन चलता है, बहुत व्यर्थ चिंतन चलते हैं। इसलिए बाबा ने बच्चों को व्यर्थ चिंतन पर, व्यर्थ को खत्म करने पर कितनी बार, कितने अव्यक्त मुरलियां हैं जो व्यर्थ को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा है। आप सोचिए, आपने एक झोली पहन रखा है, जो भी आपको मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलते जा रहे हैं आपको, आप उस झोली में डालते जा रहे हैं, लेकिन शाम को आपने देखा आपकी झोली में एक आधा ही गिफ्ट पड़ा हुआ है। आपको 10-12 गिफ्ट मिले हुए थे, सारे गिफ्ट कहाँ चले गए? आप ढूंढते हैं कहाँ चले गए, मेरी झोली में ही तो डाला था, कहाँ चला गया? बाद में आपको पता चलता है आपकी झोली में छेद हुआ है, बड़े से छेद हो गया है, जिसके कारण से जो ऊपर से आप डालते हैं वो नीचे गिरता जा रहा है। आपने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट डाले थे, किसी ने क्रिस्टल दिया था, किसी ने चांदी दिया था, किसी ने सोना दिया था, लेकिन छेद बहुत बड़ा होने के कारण वो गिर गया। इसी तरह रोज बाबा हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर अनमोल रत्न देते हैं, अनुभवों के रत्न, मार्गदर्शन, सब कुछ मिलता है हमें। सब मिलने के बावजूद अगर हमारी बुद्धि की झोली में व्यर्थ चिंतन का छेद है, व्यर्थ चिंतन के साथ 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 परचिंतन का छेद है, साथ साथ अशुभ चिंतन का छेद है। शायद मैं समझती हूं हम ब्राह्मणों में अशुभ चिंतन थोड़ा सा कम है या चलता है अशुभ चिंतन? किसी किसी का अशुभ चिंतन चलता है? किसी की बुरा चाहते हो? हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्या है? चलता है ना जी? नहीं चलता है, व्यर्थ चिंतन तो चलता है। हाँ, ये बड़ी ट्रैफिक है व्यर्थ चिंतन की। अच्छा, हमारी गाड़ी रुकने का कारण एक है ट्रैफिक। इस ट्रैफिक को हमें मैनेज करना होगा, व्यर्थ चिंतन को समाप्त करना होगा, पहले व्यर्थ चिंतन को कम करना होगा। व्यर्थ चिंतन जैसे जैसे कम होता जाएगा, पुरुषार्थ की गाड़ी फास्ट होती जाएगी, पुरुषार्थ में तीव्रता आती जाएगी। आप सोचिए, हम कई बार सोचते हैं, आप देखे होंगे क्लास में भी भाई बहने आते हैं ना, किसी किसी को पीछे आके बैठने की आदत होती है क्लास में, आके आगे नहीं बैठेंगे, वो कहां बैठेंगे? पीछे बैठेंगे। पीछे बैठ के आने जाने वालों को निहारते रहेंगे, ये रोज देरी से आता है, वैसे तो खाली बैठा रहता है, क्यों देरी से आता है? और कोई आके बैठा है, झुटका खाता है, ये क्लास में आके झुटका खाता है, ऐसे दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे। सोचते हैं ना, ऐसे सोच चलता है कि नहीं चलता है? आप सोचिए, आपके सामने कोई सो रहा है, झुटका खा रहा है, सोच चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बताइए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर सोच चलता है तो उसे उठा दो, अगर उठाना नहीं है तो सोच चलाना बंद कर दो। आपको उसे उठाना नहीं है, उठेगा नहीं, तो आप सोच के उसको बदलोगे तो नहीं ना? ऐसे हम कितने व्यर्थ विचार करते हैं कि नहीं करते? हर चीज के बारे में हमारा मंथन चलता, ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसे होता तो अच्छा होता, लेकिन बाबा कहते हैं व्यर्थ हमें समर्थ बनने नहीं देगा। व्यर्थ हमें क्या बनने नहीं देगा? समर्थ बनने नहीं देगा। इसलिए अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है, उड़ती कला में रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, तो उसके लिए हमारे व्यर्थ चिंतन पर निगरानी रखनी होगी। पहले ऑब्जर्व करना होगा, फिर उसको चेक करना होगा, चेक करने के बाद चेंज करना होगा। ये किसको करना होगा? खुद को ही करना होगा। कोई दूसरा हमारे बारे में पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पेट मेरा खाली है, भूख मुझे लगा है, तो मुझे खाना होगा। मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, दूसरा खाएगा तो मेरा पेट कभी नहीं भर सकता। अगर मेरा व्यर्थ चिंतन समाप्त होगा तब मेरा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ होगा। और हमारे पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ बनाने के लिए बाबा ने हमें दो टूल दिए है, दो साधन दिए। एक है अमृत वेला, एक है मुरली। कौन सा साधन दिए बाबा ने? एक है अमृत वेला, एक है मुरली। हम कई बार सोचते हैं कि मुरली हम घर में सुन लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते हैं, लेकिन बाबा ने चार सब्जेक्ट बताया है हमें, ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा। इसमें से दो क्लासरूम सब्जेक्ट है, दो दुनिया में अर्थात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। धारणा और सेवा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज्ञान और योग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्लासरूम सब्जेक्ट है। इसे क्लासरूम में ही पढ़ना होता है। यहां बैठ के जितना योग करेंगे उतनी स्थिति अच्छी होगी। साथ में मुरली भी बाबा के घर आके हमें सुनना है, घर में बैठ के सुनना है। तो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या करना होगा? हम सबका लक्ष्य क्या है? नर से क्या बने? नारी से। दोनों को मिला के कौन सा स्वरूप के बारे में बताते हैं बाबा? विष्णु, है ना? विष्णु के स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप बाबा बताते हैं। विष्णु स्वरूप बनना है हमें। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना होगा। नारायण को चतुर्भुज दिखाते, अर्थात विष्णु को चतुर्भुज दिखाते। चतुर्भुज विष्णु के हाथ में चार अलंकार दिखाते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, दिखाते हैं ना ये चार अलंकार। आप सोच के बताइए, अलंकार विष्णु के हैं या ब्राह्मणों के हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये अलंकार विष्णु के हैं या ब्राह्मणों के हैं? आपके पास है क्या? आपके पास है? दिया है विष्णु को, ब्राह्मणों के पास छूट जाता है ना, इसलिए किसके हाथ में दिया है? विष्णु के, हमारे संपूर्ण स्वरूप के हाथ में दिया है। अगर पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थी बनाना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, चलती कला से चढ़ती कला से बढ़कर उड़ती कला में जाना है, रुकती कला में रुक नहीं जाना है। आपको पता है ना, पानी रुक जाती है, ठहर जाती है तो उसमें कीड़े पड़ते हैं, पैसे रुक जाते हैं, किसी के सर्कुलेट नहीं होते तो पैसे काले धन कहलाते हैं। आपके शरीर में खून बहता है, खून बहना छोड़ दिया, कहां पर रुकावट आ गई, ब्लॉकेज हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आ गई तो हम भी कहीं के नहीं रहते, नालायक बन जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में रुकती कला कभी नहीं होनी चाहिए। हंसी की बात बताओ, बाबा ने हमें कहा है अंगद बनने के लिए। क्या बनने के लिए कहा? अंगद माना अचल, अडोल। लेकिन हम बच्चे कई बार है ना अंगद बन जाते हैं। अंगद माना उल्टे अर्थ से, ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते, जहां है वहां खड़े हो जाते हैं। सालों से देख रही है कई पुरुषार्थी ऐसे हैं, जहां है वहां खड़े हो जाते, ना आगे भी जाएंगे ना पीछे जाएंगे। ऐसे अंगद हमें नहीं बनना है। तो पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ने के लिए शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी बनना है। पहले शंख बजाते हैं तो ओम का नाद निकलता है। क्या निकलता है उससे? ओम। लौकिक में कहते हैं जिसके घर शंखनाद होता है वहां पर भूत प्रेत वास नहीं करते। हमारे मन में बहुत सारे भूत है, पांच भूतों के कई सारे रूप है हमारे अंदर। इन भूतों से अगर दूर रहना है, पांच विकारों के वशीभूत नहीं होना है, आज भी बाबा ने कहा है ना, मोह जीत बनना है हमें, तो हमें रोज शंखनाद करना, माना ओम के स्वरूप में आत्माभिमानी स्वरूप में रहना है, आत्माभिमानी बनकर बाबा को याद करना है। दुनिया में भगवान को तो हर कोई याद करता है, लेकिन संगम युग के योग की विशेषता है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। पहली विशेषता क्या है, अपने को क्या समझना है, अर्थात शंखनाद करना है। रोज क्या करना है, हमें शंखनाद करना है, याद रहेगा। अगर पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है तो आत्माभिमानी बनने का रोज पुनः 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 कोशिश करनी है। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम करते क्या है, शंखनाद करने के बदले शंकानाद करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में बदलाव ला दो, शंख, ये शंका, शंकाएं संदेह में आ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, अपने आप में संशय आ जाता है, ड्रामा में संशय आ जाता है, परिवार में संशय आ जाता है, ऐसे संशय में आ जाते हैं। शंखनाद के बदले शंकानाद शुरू हो जाता है, जिसके कारण से पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ के बदले साधारण हो जाता है। तो हमें क्या करना है, शंखनाद, आत्माभिमानी रहना है, साक्षी दृष्टा बनना है, कभी शंका में नहीं आना है, संशय में नहीं आना है। दूसरा चक्र, विष्णु के हाथ में दूसरा कौन सा अलंकार दिए है, कौन सा चक्र कहते हैं उसे, सुदर्शन कहते, लौकिक में सुदर्शन चक्र कहते, बाबा ने हमें समझाया स्वदर्शन चक्रधारी, क्या बनना है, स्वदर्शन, दोनों चक्रधारी बनना है, स्व का दर्शन भी करना है, सुदर्शन अच्छे विचारों का दर्शन भी करना है, हमें स्व का दर्शन करना है, मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक आया, इतने साल बीत गए, हम अपने सीनियरिटी गिनती है ना, मुझे इतने साल हुए, इतने साल हुए, इतने साल हुए, लेकिन पुरुषार्थ में कितना बदलाव आया, कितना आगे पहुंचे, कितना उड़ती कला में हम आगे है, ये कभी हम चेक नहीं करते। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ये बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है। लेकिन हम कई क्या करते हैं, देखिए पहला अलंकार हमारा शंख है, दूसरा अलंकार हमारा चक्र है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से कई हमारे अंदर छुपे हुए पुराने संस्कार, पुरानी स्वभाव, पुराने जो भी बातें हैं, उन सब का सिर कट जाता है, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम स्वदर्शन चक्रधारी के बदले परदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ के बदले साधारण पुरुषार्थ हो जाता है, उड़ती कला के बदले हम रुकती कला में आ जाते हैं। तीसरा अलंकार दिया है विष्णु के हाथ में गदा, देखा है, गदा दो लोगों के हाथ में देते हैं, एक है हनुमान जी, दूसरा है विष्णु। हनुमान जी ने ऐसे पकड़ रखा है, विष्णु जी ने ऐसे पकड़ रखा है, यह है विजय की निशानी, यह है योद्धा की निशानी, हमें विजयी बनना है। ज्ञान गदा, बाबा ने कहा ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, ज्ञान गदा, बाबा कहते ज्ञान के आधार से जो भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, परिस्थिति आए, उन सब के ऊपर हमें विजयी बनना है। हमारे ऊपर न प्रभाव, न अभाव, न स्वभाव, किसी का भी हमारे ऊपर असर ना पड़े, इसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन हमारे पास गदा है, लेकिन गदा पता नहीं हम कहाँ खो लेते हैं, ज्ञान को कहाँ फेंक देते हैं। बाबा कहते मैं बहुत सुंदर अलंकार कराता हूँ रोज सवेरे हमारे बच्चों का, ज्ञान के द्वारा कराते हैं ना बाबा, रोज रोज मुरलियों से हमारा श्रृंगार कराते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकले वहां माया इंतजार कर रही है, वो अलंकार करना शुरू कर देती है, भगवान के अलंकार उतार देती है। बाबा कहते मेरे बच्चे मेरे सारे अलंकार उतार कर गधा बुद्धि बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, गधा के बदले क्या हो जाते हैं, एक मात्रा का फर्क होने से कितना बदलाव हो जाता, गधा के बदले क्या हो गया, गधा। बाबा के किए हुए सारे अलंकार धूल मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए हमारा तीव्र पुरुषार्थ से कदम लड़खड़ाने लगते हैं, हम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। तो क्या बनना है? ज्ञान का सहारा लेना है। कभी भी मूर्ख, बाबा कहते हैं ना महामूर्ख को देखना हो तो भी यहां ही देख सकते हैं, हमें कभी भी महामूर्ख नहीं बनना है। चौथा है कमल पुष्पधारी। विष्णु के हाथ में कौन सा चौथा अलंकार देते हैं? कमल पुष्पधारी। कमल पुष्प कीचड़ के बीच में रहते हुए ऊपर खिलता है और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। आपको पता है कमल कैसे खिलता है? अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़े तो कमल खिलता नहीं है। तो हम भी अगर बाबा के रोशनी से वंचित रह जाते हैं, बाबा की रोशनी माना बाबा का ज्ञान, बाबा की रोशनी माना बाबा के शक्ति ताकत, उससे जब हम वंचित रह जाते हैं या बाबा से विमुख हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, माया की तरफ चले जाते हैं, तब हमारे अंदर जो पवित्रता की ताकत होनी चाहिए, शुद्धता की ताकत होनी चाहिए, जो पुरुषार्थ को तीव्र बनाने में हमारी सहायता करती है, वो कम हो जाता है। पहली माया की ताकत हमारे ऊपर असर करती है, मुरली बंद करते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं। मुरली बंद हो गई, परिवार से दूर हो गए, पुरुषार्थ में पीछे रह गए। हम बोलते हैं हम तो ज्ञानी हैं, हम घर बैठे भी हम बाबा को नहीं छोड़े हैं, लेकिन माया धीरे 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 पकड़ने लगती है, जिसके कारण से कमल पुष्प के बदले हम कलमधारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हर बात के लिए प्रूफ चाहते हैं। दीदी से भी प्रूफ मांगेंगे, बाबा से भी प्रूफ मांगेंगे, परिवार से भी प्रूफ मांगेंगे, कलमधारी बन जाते। कमल पुष्प के बदले क्या बन जाते हैं? हम कलमधारी बन जाते। आज की लौकिक दुनिया में हर चीज का प्रूफ चाहिए, है कि नहीं है? आप सामने खड़े हैं तो भी आपका आधार कार्ड दिखाएंगे तभी आपको लोग मानेंगे। आज दुनिया ऐसे चलती है। बाबा के बच्चे भी जब ज्ञान में थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, माया की प्रवेशता हो जाती है, तब वो भी प्रूफ मांगने लगेंगे। तब क्या हो जाते हैं? तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी या तीव्र कला, तीव्र पुरुषार्थी से रुकती कला की ओर आ जाते हैं। इसलिए नारायण बनने के बदले दरिद्र नारायण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बनने निकले थे नारायण और क्या बन के रह गए? देखिए, सोचिए, हम ब्रह्मा बाबा, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार जी सभी एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही परमात्मा टीचर है हम सभी का। मम्मा का भी वही टीचर है, ब्रह्मा बाबा का भी वही टीचर है, हमारा भी वही टीचर है। टीचर एक है, पाठशाला एक है, समय एक है, पालना एक जैसी है, फिर भी ब्रह्मा बाबा नारायण बन गया, हम क्यों पीछे है? क्यों पीछे है? क्योंकि बाबा को अपने आप पर भी शंका नहीं थी, संशय नहीं था। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पर भी कभी भी संशय नहीं आया, न परिवार पर, न यज्ञ पर, न भगवान के महावाक्यों पर संशय आया। इसलिए अगर हमें भी ब्रह्मा बाप समान तीव्र पुरुषार्थी बन के बचे हुए थोड़े से समय में पुरुषार्थ को अच्छा बनाना है, तो यहाँ भगवान की वरदान भूमि, अवतरण भूमि, संकल्प से सिद्धि पाने की भूमि में हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे अमृत वेले हम अपने आप से संकल्प करें कि हम नर से क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे जरूर। कौन कौन है जो नारायण नहीं राम बनना चाहते हैं? नहीं, हम राम बनेंगे, ठीक है चलेगा, राम बनेंगे, क्योंकि अभी कलयुग की दुनिया में नारायण से ज्यादा राम की महिमा हो रही है। इतना बड़ा मंदिर जो बनाए है, और अभी अभी हमारे साउथ में गोवा में एक स्वामी जी ने 77 फुट लंबी राम जी की प्रतिमा बनाई है। अभी अभी उद्घाटन होने वाला है नवंबर 28 को। राम की महिमा बहुत है कलयुग में, तो हम राम बने तो चलता है, कौन कौन सोचते कि नारायण के बदले राम बले तो चलता है, हाथ उठाइए जरा। अच्छा अच्छा, आप सभी को राम बनना मंजूर नहीं है, नारायण बनना किस किस की आशा है, उद्देश्य है, लक्ष्य है? लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंच है सभी का, है ना। अपने दाएं हाथ आगे बढ़ा दीजिए, सभी एक बार दाएं हाथ आगे बढ़ा दीजिए, पीछे लीजिए, वाह 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 वाह, क्यों वाह वाह? सभी का लक्ष्य क्या है, पक्का है ना, नारायण बनना है। नारायण बनने के लिए ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख के चलना होगा, इधर उधर देखते हुए कहीं हम हमें अपने लक्ष्य से भटक न जाए, इसका हमें अटेंशन रखना होगा। तो ये अटेंशन रखने के लिए आज से हम पक्का करें, पहली बात, बाबा ने कई बार कहा है संशयात्मा विनश्यन्ति, क्या कहा है, संशयात्मा विनश्यन्ति निश्चय बुद्धि विजयन्ति। हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को चेक करें कि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि यस मैं नारायण बनूंगा, मैं नाथ। अच्छा, जित बहुत सारी माताएं बैठी है, माताओं की क्या इच्छा है, नारायण बनना या लक्ष्मी बनना? कौन कौन माताएं नारायण बनना चाहती है? अब देखो हाथ उठाने में थोड़ा आगे पीछे, कौन कौन माता लक्ष्मी बनना चाहती है? सभी माताएं क्या सोचती है पता है, सत्युग में भी पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, है ना, इसलिए हम पहले लक्ष्मी बनेंगे, आप पीछे नारायण बन जाना, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी बने या नारायण, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट चाहिए संशय कभी नहीं आना, कभी भी संशय आने नहीं देना, ना अपने आप पर, ना बाप पर, ना यज्ञ पर, ना बाबा की मुरली पर, न बाबा के सेंटर पर, कोई भी बात में हमें संशय नहीं आना है। आज कौन कौन है ये पक्की प्रतिज्ञा करेंगे कि कभी भी हम अपने आप पर, ड्रामा पर, बाबा की मुरली पर संदेह नहीं करेंगे, संशय नहीं करेंगे। यहां से जाने के बाद पक्ष तो नहीं पलटेंगे ना, आजकल बहुत सारे इलेक्शंस चल रहे हैं, पक्ष बदलाव बहुत चल रहा है, अब भी यहां से चेंज करके यहां से वहां छलांग तो नहीं मारेंगे ना, पक्का। पहले ये पक्का करना है, दूसरा परचिंतन नहीं करना है, हमें परदर्शन नहीं करना है, दुनिया को बदलने का ठेका हमने नहीं उठाया है, भगवान के साथ ही हम जरूर बनेंगे, लेकिन इसको उसको इसको बदलना हमारे हाथ में नहीं है, हमारा उद्देश्य भी नहीं है, वो किसका काम है, बाबा का और ड्रामा का, वो करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्वदर्शन करें, स्वचिंतन करें, परचिंतन को छोड़ दें। आज ये चारों अलंकार हम दोबारा चेक करें, हम नारायण बनने जा रहे हैं, क्या हमारे अंदर शंख ध्वनि हो रही है? दुनिया कहती है एस यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। अगर आप अपने आप पर ही विश्वास नहीं करोगे, भगवान की बनाई हुई ड्रामा पर विश्वास नहीं करोगे, जो स्वयं भगवान वेश बदल के इस दुनिया में आया है उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो फिर किस पर करोगे विश्वास? इसलिए ये चारों बातों में आज हम पक्के बनेंगे, उसके लिए हम अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, संगम युग में कभी भी पुरुषार्थ में हमें रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। अच्छा, अभी चलते जाते हैं, रोड में चलते जा रहे हैं हम, हमारी बहुत अच्छी गाड़ी है, जैसे मैंने पहले कहा रोल्स रॉय कार लिया है, चलते जा रहे हैं, गाड़ी चलती जा रही है, अच्छी गाड़ी है, बहुत फास्ट चलती है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे उबड़ दाबड़ है, तो भी हमारी चलने की गति मंद हो जाती है, धीरे धीरे चलते हैं। तो ये उबड़ दाबड़ क्या है, पहले पुरुषार्थ की गति को तीव्र से साधारण करने वाली है हमारे ही पुराने संस्कार। कौन सी है उबड़दाबट? पहली कौन सी है समस्या? पहला विघ्न कौन सा है? हमारे ही पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव। बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही एक मुरली में, तीव्र पुरुषार्थ में बाधा क्या क्या डालता है। एक है दबाव, एक है स्वभाव, एक है अभाव, एक है प्रभाव। चार बातें बताई है बाबा ने, बहुत सुंदर बातें हैं। पुरुषार्थ में हमारे पुरुषार्थ की गति को साधारण बनाने वाली है पहले हमारा पुराना स्वभाव। हर एक का अपना स्वभाव है। हम कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, क्या करें। लेकिन आप सोचिए, ये देवात्मा का स्वभाव है या कलियुगी आत्मा का स्वभाव है? हम पूर्वज, हमारे पूर्व स्वरूप अनादि स्वरूप कौन सा है? देवात्मा है। देवात्मा का ये स्वभाव हो सकता है? अगर देवात्मा का स्वभाव नहीं है तो ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। ये पराया स्वभाव है, रावण से हमने लिया हुआ है। इसलिए हम कभी स्वभाव के असर में ना आए। कोई चीजें कम हो गई है, अभाव है, तो भी अभाव के असर में ना आए। जब हम यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यज्ञ की हिस्ट्री हम जब पढ़ते हैं तो ठंडी में माउंट आबू में इतनी ठंडी होती थी, माइनस पे चली जाती थी, यज्ञ में कुछ नहीं होता था, बाजरे की रोटी और छाछ देते थे बाबा। इतनी कड़ी ठंडी में छाछ कोई पीता है क्या? लेकिन बाबा देते थे यज्ञ में, और कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी किसी ने एक भी ना नहीं किया और बाबा के कहने पर चले। आज इतना बड़ा यज्ञ खड़ा है तो उन सब के उस त्याग तपस्या के बल से खड़ा है। कोई भी अभाव ने उनके जीवन के पुरुषार्थ में असर नहीं डाला। हमें छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी है ना, पीछे बैठ गए, सीट नहीं मिली, ये छोटी छोटी चीजें हमारे पुरुषार्थ को डगमगा देती है। पहला स्वभाव, उसका असर ना पड़े। अभाव, कोई चीजों का होना ना होना असर ना करे। उसके बाद होता है दबाव, प्रेशर, हमारे पुराने संस्कारों का प्रेशर होता है, आसपास के लोगों का प्रेशर होता है, किसी पुरुषार्थी का प्रेशर होता है, उसमें हम ना आए। फिर प्रभाव, आजकल हम YouTube के प्रभाव में, उसके इसके पता नहीं क्या क्या रील के प्रभाव में आ जाते हैं। आंखें जिसको देखती है उसी को नहीं मानते, बाबा की मुरली को नहीं मानते, किसी की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रभाव के कारण हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ से साधारण पुरुषार्थ हो जाता है। इसलिए केवल मात्र केवल संगम युग में हमारे पुरुषार्थ का आधार होना चाहिए बाबा की साकार मुरलियां और बाबा के अव्यक्त मुरलियां। हमारे पुरुषार्थ के आधार दो ही चीजें होनी चाहिए। संगम युग में यूनिवर्सिटी में हम सभी पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? विश्वविद्यालय में हम बैठे हैं। इस विश्वविद्यालय में नए पुराने सबके लिए दो ही सिलेबस है, दो ही सिलेबस, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, साकार वाणी और अव्यक्त वाणी। उसके सिवा दूसरा कोई भी सिलेबस हमारा नहीं है। उन्हीं साकार मुरलियों को, उन्हीं अव्यक्त मुरलियों को रोज सुने, उसका नोट्स ले, उसका हम पुरुषार्थ बनाए। जितना मुझे याद है दादी प्रकाशमणि को जितना हमने देखा है, लास्ट तक भी बहुत दिनों तक हमने दादी को नोट्स लिखते हुए देखा था। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, अव्यक्त बाप दादा के सामने दादी बैठती थी, अपना नोट्स लेके लिखती थी। जबकि संस्था की मुखिया थी दादी, दादी के पास तो मुरली यूं पहुंच जाता था बाबा के मुरली खत्म होते ही, फिर भी दादी स्टूडेंट लाइफ जीती थी। उनके ये पुरुषार्थ ने संस्था को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया और वो हमारे लिए एक आदर्श बन गए। इसलिए संगम युग में भी हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए इनका उनका किसी का आधार नहीं लेना है। बाबा कहते फॉलो फादर, फॉलो फादर। बाबा ने ये नहीं कहा फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसको फॉलो करने के लिए कहा है बाबा ने हमें? किसको फॉलो करना है? फॉलो फादर, ब्रदर सिस्टर्स को नहीं। लेकिन हम कॉपी किसको करते हैं? हम कॉपी किसको करते हैं? हमारे क्लास में आने वाले दूसरे भाई बहनों की, या मधुबन में जो मिल जाते उनकी, इनकी उनकी क्लासेस, या इसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ क्यों करना है पता है? क्योंकि अब घर जाने का समय है। अभी कहां जाने का समय है? वापस घर जाने का समय है। आप सोचिए, अभी यहां सब बैठे हैं हम बाबा के घर में, आप सभी घर में बोल के आए हो, आप सभी का वापसी का टिकट भी होगा। सभी का टिकट है वापस जाने का? टिकट है यहां से घर वापस जाने का है, या यहां से अपने गांव वापस जाने का टिकट है? दोनों टिकट है, दोनों टिकट है कि नहीं है? यहां से अपने गांव वापस जाने का भी टिकट है, यहां से अपना घर वापस जाने का भी टिकट है। सोचिए, यहां बैठे बैठे बाबा ने घर के लिए बुलावा भेज दिया, चलो सभी परमधाम चलेंगे। कौन कौन तैयार है यहां से सीधे परमधाम जाने के लिए? घर को बोल के आना नहीं पड़ेगा, घर वालों को बोलना तो पड़ेगा कि हम जा रहे हैं। समय मिलेगा? अच्छा, सभी जाने के लिए तैयार है? तैयार है, तैयारी के साथ तैयार है, या यूं ही तैयार है? आप अभी मधुबन आ रहे थे, शांतिवन आ रहे थे, बाबा मिलन में आ रहे थे, तो थोड़ी सी तैयारी की होगी ना? बैगेज पैक किया होगा, कपड़े लाए होंगे, वेदर चेक किया होगा, गर्म कपड़े चाहिए या नहीं, सफेद कपड़े तैयार किए, खाना चेक किए, रिजर्वेशन कराए, कितनी तैयारी करके यहां तक पहुंचे। तो वापस घर जाने के लिए क्या तैयारियां की है? कौन कौन तैयारी किए है कि वापस घर जाने के लिए? सभी की तैयारी है? अभी जाना है, बाबा बुलाएंगे तो जाना ही है, वो बात अलग है। लेकिन क्या तैयारी के साथ बैठे हैं? इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी इसलिए बनना है, अब घर जाने की तैयारी करनी है हमें। क्या करनी है? जैसे कपड़े पैक करते हैं वैसे संकल्पों को समेटना है, जैसे पैसे जोड़ते हैं वैसे अपनी जमा पूंजी जमा करनी है, खाता बढ़ाना है, पुण्य का खाता, श्रेष्ठ संकल्पों का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है, ताकि हम घर जा सके। खाली तो नहीं जा सकेंगे ना, जाते समय हमारे साथ पुण्य की पूंजी लेके जाना होगा। उसकी तैयारी किए है क्या? अपने आप से चेक करें। कई बार हड़बड़ी में जाते समय हम अपना बैगेज बदल लेते हैं, दूसरों की बैगेज, कई बार होता है ना, ट्रेन से उतरते समय भी दूसरों की बैगेज उठा लेते हैं, ऐसे वापस घर जाते समय हम जो लेके जाना चाहे वो यहां छोड़ के जो ऐसे ही चले गए तो वापस तो नहीं आ सकते। इसलिए अब याद रखना है हम सभी को, अब घर चलना है। मुझे याद आता है 83 में एक सुंदर गीत बना था, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है कि अब घर जाना है। सुने हैं सभी ने गीत? सुने हैं? बहुत सुंदर पुराना गीत। उसी साल ओम शांति भवन बना था 83 जनवरी में। दीदी मनमोहिनी जी का बहुत प्यारा गीत था, ये नया गीत बना था। दीदी क्लास कराती थी, हम लोगों से मिलती थी, पार्टी से मिलती थी, तो कहती थी सब तैयार है अब घर चलने, बस यही गीत बजवाती थी और कहती थी अब घर जाना है। उसी साल जुलाई में दीदी ने शरीर भी छोड़ दिया। दीदी को जब जाना था 6-7 महीने से दीदी ने पुरुषार्थ किया था, सभी को यही सुनाती थी, दीदी मना। आप यहां पर देख रहे हैं दीदी मनमोहिनी हमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका रही, दादी प्रकाशमणि जी के साथ ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद 83 तक, तो बहुत अच्छी पुरुषार्थी, बहुत अच्छी धारणायुक्त श्रेष्ठ आत्मा रही, जिनके मार्गदर्शन में हम सबका जीवन श्रेष्ठ बना है। तो दीदी का अंतिम दिनों का ये एक मानो मंत्र बन गया था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो हम सबको भी अब घर जाने का वक्त आया है। ऐसे नहीं कि संगम युग खत्म होगा तो घर चलेंगे, क्या पता संगम युग खत्म होने से पहले शरीर छूट जाए, किसको क्या गारंटी है। लेकिन इसलिए आज से हम अपना बैग बैगेज पैक करना शुरू करें। हम राजयोग की सिद्धि बताते हैं ना दुनिया वालों को, अष्ट शक्तियों की प्राप्ति बताते हैं, राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति बताते हैं ना। उस आठ शक्तियों में से एक शक्ति है समेटने की शक्ति, सब कुछ समेट कर जो चाहिए वो ही ले जाना है। इसलिए हमें वापस जाने का अभी तैयारी करनी है, पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए हम फिर से एक बार रियलाइज करें, व्यर्थ को रोकना होगा, इधर उधर की बातें, वहां की यहां की बातें। यहां आए हैं बहुत सारे हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी परिवार के भाई बहने मिलते हैं, उनसे हम पुरुषार्थ की बातें करें, ना कि इधर उधर की बातें, है ना। जब मिलते हैं तो इधर उधर की बहुत सारी वेस्ट बातें हम कर लेते हैं, जिसके कारण बोझ चढ़ जाता है। उस बोझ को उतारना होगा, उतारने के लिए जब तक हम यहां हैं अपने आप से प्रण करें, हम अपने आप पे विश्वास रखेंगे और विश्वास के आधार से विजय भी प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हम सभी को उड़ती कला में जाना है। उड़ती कला में जाने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ को पटरी पर चलाना है। कौन सी पटरी पर? कौन सी पटरी? यथार्थ पुरुषार्थ की पटरी पर। जब हम पुरुषार्थ में लग जाते हैं, अब हम सोचेंगे कि हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाने में बाधाएं क्या क्या आती है वो हमने देखा। अब पुरुषार्थ को तीव्र बनाने में हम क्या क्या टूल्स अपना सकते हैं? पहले तो मैंने सुनाया, आप सभी रोज मुरली सुनते हैं? कौन कौन है जो रोज मुरली सुनते हैं? ऑनलाइन कौन कौन सुनते हैं और ऑफलाइन कौन कौन सुनते हैं? सेंटर जाके कौन कौन सुनते हैं? बहुत अच्छी बात है। और मुरली सुनते हैं तो उसको नोट्स भी लेते हैं? कौन कौन नोट्स लेते हैं? आजकल नोट्स लेने वाले कम हो गए, सोचते मोबाइल में है उसी को हम देख लेंगे। लेकिन स्कूल में आपको पता है जब हम बचपन में स्कूल जाते थे हमको लिखवाया जाता था, एक पैराग्राफ 10 बार लिखो, एक पैराग्राफ 20 बार लिखो, लिखवाया जाता था। वो लिख लिख कर हमारी लिखत भी सुधरी, अक्षर सुधरे, जो हमने लिखा वो हमें पक्का भी हो गया और आज भी याद है। तो हम भी बाबा के स्टूडेंट्स हैं, आज से एक संकल्प कीजिए, जिन जिन को पढ़ना लिखना आता है, अगर पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है तो रोज बाबा के मुरली का नोट्स लेना है। क्या करना है? कौन कौन नोट्स लेंगे आज के बाद? अच्छी बात है, आपके पास नोट्स नहीं है तो खरीद लेना, लेकिन कल से शुरू करना। कल शाम को बाबा आएंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, पहले बाबा की मुरली से ही शुरू कीजिए लिखना, क्योंकि जितना लिखेंगे ना दो काम चलेगा, एक सुनना लिखना, फिर लिखते हुए पढ़ना, 3 बार रिपीट हो जाता है, मुरली मुरली और मुरली। पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए आधार दूसरा, रोज मुरली तो हम सुनते ही हैं, साथ में रोज एक अव्यक्त मुरली रात को हम पढ़े। क्या करें? रोज अव्यक्त मुरली, आपको पता है 69 से लेके शायद 2018 तक के हमारे पास बहुत सारी मुरलियां हैं, इतने सारी मुरलियां हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई कॉलेज में कोई पढ़ता है, जो टेक्स्ट बुक दी जाती है इस साल के सिलेबस के लिए, अगर बुक ही नहीं पढ़ा है तो एग्जाम कैसे लिखेगा? तो हमारे भी स्कूल में 2 सिलेबस है, एक साकार मुरली एक अव्यक्त मुरली। साकार मुरली तो रोज पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन अव्यक्त मुरली तो हफ्ते में एक मुरली हम पढ़ते हैं सुनते हैं। तो इतने सारी 600-700-800 मुरलियां हैं, वो सब हम कब पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो जीवन में कैसे उतारेंगे? इसलिए आप सोचिए, आपने कभी सोचा था कि भगवान भी इस धरती पर आएगा? आपने ये सोचा था भगवान इस धरती पर आएगा तो वो मुझे मिलेगा? सोचा था क्या? अगर मुझे मिलेगा भी, हमने सोचा था शायद गाय के रूप में मिल जाए, शायद कौवे के रूप में मिल जाए, इसलिए कौवे को खाना खिलाते थे, गाय को खाना खिलाते थे, कुत्ते को खाना खिलाते थे, पता नहीं किस रूप में मिल जाए। लेकिन संगम युग में बाबा ब्रह्मा के शरीर में मिल गया हमें। कहाँ मिल गया? मिला है सभी को बाबा, मिला है, मिला है। अब बाबा मिला है। देखिए, मनुष्यों की बातें हम भूलते नहीं है। अगर किसी ने हमारा इंसल्ट किया है 10 साल पहले, हम कहते हैं मरते दम तक याद रखेंगे तेरी बात, भूलेंगे नहीं हम, ऐसे कहते हैं ना। जो नेगेटिव बातें हैं वो हम याद रखते हैं, लेकिन भगवान की बातें हम भूल जाते हैं। कितनी विपर्यास की बात है ये। मनुष्यों की बात हम भूलते नहीं है, भगवान की बात हमें याद नहीं रहती है। तो कमी किस में है बताइए? कमी किस में है? हमारे में है ना। तो आज से हम एक आदत डालेंगे, मनुष्यों की बात कम याद रखेंगे, भगवान की बातें ज्यादा याद रखेंगे। किन बातों को याद ज्यादा रखना है? बाबा हमें भूल क्यों जाता है? बाबा की यादें भूल जाती है क्योंकि बाबा की बातों को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बाबा की बातों को हम महत्व नहीं देते हैं। अगर संगम युग में पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, केवल मुरली सुनने से नहीं होगा, मुरली के बारे में हमारी सोच भी ऊंचा रखना कि ये भगवान के महावाक्य है। किसके महावाक्य है? एक बार एक माता आई मेरे पास, कर्नाटक की माता, हिंदी पढ़ना नहीं जानती थी। मेरे से बोली, दीदी मुझे एक हिंदी मुरली दे देना। मैंने कहा, आपको तो हिंदी पढ़ना नहीं आता, लेके क्या करोगी? नहीं नहीं दीदी, चाहिए, एक दे दो, एक दे दो। बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने एक हिंदी मुरली दे दी उसको। बहुत दिन बीत गए, एक दिन उसके बेटे का फोन आया, दीदी मम्मा बीमार है, आपको बहुत याद कर रही है। बहुत पुरानी माता थी। मैंने कहा ठीक है, हम मिलने आ जाते हैं। मिलने चले गए उसके घर, और लेटी हुई थी पलंग पर, बीमार थी। हम उससे मिले, मुरली सुनाई, बाबा की दृष्टि दी, तोली दिया। मैंने पूछा, माता जी बाबा को साथ में रखे हो, बाबा याद है, या बीमारी इतनी जोरदार है कि बाबा ही भूल गया है? तब क्या बोली, नहीं नहीं दीदी, मैंने तो बाबा को ना पिल्लो के नीचे रखा है। समझ में आया? जो मुरली लेके गई थी ना मेरे से, उसने क्या किया था, वो मुरली अपने तकिए के नीचे रख दिया था। ऐसे रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए मुझे। बहुत सारी माताओं की आदत होती है, तकिए के नीचे मुरली रखती है, सोचती है तकिए से सीधा सिर पर घुसेगा मुरली। ऐसा होगा कभी? नहीं, मुरली बाबा का, भगवान का महावाक्य है, कभी तकिए के नीचे नहीं रखिएगा। लेकिन रोज पढ़ना, अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुनना, लिखना आता है तो लिखना। मुरली हमारे जीवन का आधार है, मुरली हमारा सांस है, मुरली जीवन का, हमारे जीवन के लिए, हमारी जीवन के लिए संजीवनी बूटी है मुरली। परमात्मा के महावाक्य है मुरली, जो हम खास बच्चों को ही समझ में आती है। बड़े बड़े विद्वानों को मुरली समझ में नहीं आती। कई बड़े बड़े विद्वान जब मुरली की क्लास में आके बैठते हैं, कहते दीदी कुछ समझ में नहीं आता, होती तो हिंदी सीधी सी बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान के महावाक्य केवल भगवान के बच्चे ही समझ सकते हैं। हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें भगवान की भाषा समझ में आती है। हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें भगवान की भाषा समझ में आती है। आती है कि नहीं आती है? आप सभी को भगवान की भाषा समझ में आती है? आती? आप सभी भगवान की भाषा समझते हो? समझते हो ना? देखिए, पूरे देश भर में देखिए, पूरे विश्व भर में देखिए, कितनी संस्कृति है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, लेकिन सभी बाबा के बच्चे जब बाबा के घर में बैठे बाबा की मुरली सुन रहे होते हैं तो सबकी एक ही भाषा होती है, वो भगवान की भाषा। कौन सी भाषा? भगवान की भाषा। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए, हमें भगवान की भाषा समझ में आ रही है। हमें भले इंग्लिश नहीं समझ में आती है, कर्नाटक वालों को हिंदी समझ में नहीं आती है, हिंदी भाषिक लोगों को कन्नड़ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, दूसरी भाषा समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसकी भाषा समझ में आ गई है? अरे आपके चेहरे में खुशी ही नहीं है, भगवान की भाषा। ये क्या बात हो गई? किसकी भाषा समझ में आनी चाहिए? आ रही है आप सभी को? खुशी है कि हमें भगवान की भाषा समझ में आ रही है, इसीलिए बहुत खुशी से वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी मुरली, वाह मेरा बाबा, वाह बाबा का घर, वाह मधुबन, वाह यज्ञ, वाह परिवार, वाह टोली, वाह ब्रह्मा भोजन। इतने कहने पर भी कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं है। खुशी नहीं है इसलिए ताले बजा रहे हो? इतनी खुशी होनी चाहिए। मैं हर बार बाबा के घर आती हूं तो सोचती हूं, बाबा इस कल्प में और एक बार आपके घर आने का मौका मिला, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, इस बार तो पहुंच गए इस कल्प में और एक बार बाबा के घर आने का। आप सोचिए, आप ऊपर गए थे पांडव भवन गए, वहां जाके आपने सोचा जिस मिट्टी में स्वयं भगवान चले, जिस मिट्टी में कौन चले थे? ब्रह्मा के तन में स्वयं भगवान चले, जिस मिट्टी में जिस हवा में स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में बैठ के सांस लिए, जिस मिट्टी में अभी भी उस कदमों की आहट है, जिस मिट्टी में अभी भी उस महान पुरुषार्थी की पुरुषार्थ की खुशबू फैला हुआ है, उस धरनी पर उस तपोभूमि पर हम आए हैं। अहो मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। ऐसे सोचे शांतिवन में भी, आप सोचिए शांतिवन में, सोचिए 30,000 लोगों के बीच गुलजार दादी के शरीर में स्वयं बाप दादा आते थे, क्या दृश्य है वो, स्वयं भगवान जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे, वो स्वयं इस धरती पर हमारे आंखों के सामने आया। हम आंखें मल मल कर देखे कि ये सच है कि ख्वाब है, जो ख्वाब में भी नहीं था वो साकार हो गया। भगवान को हमने इन आंखों से देखा है, भगवान को इन आंखों से हमने बोलते हुए सुना है, इन कानों से सुना है, हम कितने भाग्यशाली हैं। कल फिर उन अव्यक्त महावाक्यों को पुनः हम सुनेंगे, उसी दृश्य को दोहराएंगे। बाबा का वादा है जब अव्यक्त बाप दादा का सीजन चलेगा, बाबा की पधरामणि स्थूल में नहीं होगी लेकिन सूक्ष्म में जरूर होगी। कल बाबा आएंगे, किस किस को विश्वास है कि कल बाबा आएंगे? उसी भावना से, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से हम बैठेंगे कि भले स्क्रीन में बाबा चल रहा है लेकिन कल बाबा सूक्ष्म में हमसे मिलने, क्योंकि जहां ब्राह्मणों का संगठन है वहां बाबा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी मधुबन में, है ना। इसलिए आज अपने इस यहाँ के आने के लिए खुशियां मनाना कि बाबा ने फिर से हमें यहाँ बुला लिया, अपने घर में हमें बुला लिया, अपने दिल में तो जगह दे ही दिया था, कई होंगे बहुत कष्टों के बाद यहां पहुंचे होंगे, आपका कैंसल होते होते आप यहां पहुंच गए होंगे, कई होंगे दूसरों के टिकट में भी आ गए होंगे, कई होंगे तत्काल में टिकट लेके पहुंच गए होंगे। इन सबको किसने बुलाया, किसने बुलाया? आप सभी को यहां किसने बुलाया है? पक्का बाबा ने बुलाया है। अब बताइए संगम युग में आपको किसने बुलाया है? आप खुद आए हो या बाबा बुलाया है? संगम युग में बाबा आपको चलने के लिए बुलाया या उड़ने के लिए बुलाया है? तो आपका पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ होना चाहिए या तीव्र पुरुषार्थी होना चाहिए? तो फिर साधारण क्यों है? क्योंकि हम बाबा के हाथ को छोड़ देते हैं। जब मेले में बच्चों के साथ माँ बाप चलते हैं, मेले में इधर उधर देखते हुए बच्चे माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो गुम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे जिंदगी के मेले में भी भगवान ने हाथ पकड़ा है, अब गलती से भी भगवान का हाथ मत छोड़ना। लेकिन याद रखना, आप गलती से छोड़ोगे भी तो भगवान छूटने नहीं देगा, पकड़ लेगा। अब आप सच्ची सच्ची बात बताइए, आपने बाबा को पकड़ा है या बाबा ने आपको पकड़ा है? किसको किसने पकड़ा है? हाँ, आपके हाथ छूट सकती है लेकिन बाबा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाबा की स्ट्रांग हाथ है, पकड़ है, इसलिए बाबा ने हमारे हाथ पकड़ा है। तो इसलिए रोज अमृत वेले उठते अपने भाग्य के लिए एक बार बाबा को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। देते हैं बाबा, आज और एक बार आपके सामने अमृत वेले मिलने का मौका मिला, आज और एक बार आपके सामने अमृत वेले मिलने का मौका मिला। थैंक यू बाबा। बोलेंगे सभी बोलेंगे। अच्छा, अमृत वेले की बात आई तो मुझे एक हंसी की बात याद आती है। कईयों ने सुना होगा मेरे मुख से, अनेक बार मैंने कहा है। एक बार मैं भट्टी में क्लास करा रही थी अमृत वेले के महत्व पर। विषय क्या था? अमृत वेले का महत्व। एक घंटे का क्लास कराया, उसके बाद एक भाई उठ के आया, बोला दीदी कितने भी करो ना मेरा अमृत वेला आंख खुलता ही नहीं है, 6:30 बजे उठता हूं मैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी सोया करो, रात को जल्दी सोया करो, अमृत वेले उठ जाएंगे। बोला नहीं दीदी, कितने भी जल्दी सोऊं मैं 6:30 बजे से पहले उठ नहीं सकता हूं। मैंने कहा रात को जल्दी खाना खाया करो, 6:30 बजे खाना खाओगे तो अमृत वेले उठना आसान हो जाएगा। खट्टी चीजें मत खाया करो, कड़ी नहीं खाओ रात को, टमाटर ऐसी चीजें मत खाओ, सवेरे उठना आसान हो जाएगा। नहीं नहीं दीदी, सब करके देख लिया, होता नहीं है। तो मैंने कहा जब आपने ठान ही लिया है अमृत वेले उठ नहीं सकते तो कौन क्या कर सकता है? तो उस भाई ने क्या बोला पता है? दीदी मैंने एक प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया? बोलता है उसने एक ग्लोब खरीदा है। क्या खरीदा है जानते हो? ग्लोब। स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए ग्लोब होता है, उसने एक ग्लोब खरीदा है और वो योग करने का जगह है ना घर में, जहां वो उठ के योग करता है वहां पर रखा है। और देरी से उठता है, रोज 6:30 बजे या 7 बजे उठता है। उठने के बाद देखता है अब कौन सा समय है, 6:30 बजा है 6:30 बजा है या 7 बजा है। देखने के बाद सोचता है अब कौन से देश में अमृत वेला होगा। फिर क्या करता है, ग्लोब को घुमा देता है और उस देश में बैठ के योग करता है। मतलब आप भी ऐसे करोगे? ताली बजा रहे हो, इसका मतलब आप भी ऐसे करोगे? नहीं, ऐसा अजीबो गरीबो प्लान नहीं बनाना है ना, कैसे भी करके अमृत वेले उठने का प्लान बनाना है ऐसे। इसलिए बाबा कहता मेरे बच्चे मेरे से भी बुद्धिमान है, सवेरे सवेरे काले कोट वाले वकील बन के मेरे सामने आ जाते हैं, मेरी ही बताई हुई बातें मुझे आधे अधूरा सुनाते हैं। ऐसे बच्चे नहीं बनना, ऐसे बहानेबाजी भी नहीं करना। नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए संगम युग में बाबा के घर से जाते समय पक्का करके जाना हमारा पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ नहीं रहे, क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं है, हम महान आत्माएं हैं। भगवान के आंखों के नूर है, भगवान के दिल तख्त नशीन है, शिव बाबा ने हमें चुना है। इसलिए हम विशेष आत्माएं हैं, तो हमारा पुरुषार्थ भी विशेष पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, साधारण पुरुषार्थ, रुकने वाला पुरुषार्थ, रुकती कला वाला पुरुषार्थ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। आप सबने बहुत उमंग उत्साह से भरा हुआ क्लास आप सबने सुन लिया। अभी आपको किसी को भी लगता है पुरुषार्थ कठिन है? नहीं है ना? इतना सरल रूप से, सहजता से कैसे हम पुरुषार्थ करें, बहुत सुंदर रूप से, रमणीक रूप से दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो यही विश्वास के साथ हम दीदी को भी माने यही विश्वास देंगे कि हम सच में बहुत अच्छे से तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। हाथ उठाएंगे दीदी को एक बार, दीदी देखना सब तीव्र पुरुषार्थी है अभी। तो दीदी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छे से सबके अंदर उमंग उत्साह भरा है। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन
ओम शांति। सभी माताएं प्लीज बैठ जाएंगे, अभी योग चल रहा है, कोई भी भीड़ नहीं करेंगे, सबको सौगात मिलने वाला है, कोई एक भी नहीं छूटेंगे, तो प्लीज योग चल रहा है, शांति में बैठ जाइए प्लीज।